अब चलते हैं आयत नंबर 122 पे। वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफा, और ये तो हो नहीं सकता कि सारे ही मोमिन निकल खड़े हों। लिहाजा फलौल नफर मिन कुल्लि फिरकतिम मिनहुम तौइफतुल लियतफक्कहू फिद्दीन, तो क्यों ना निकले हर कबीले से चंद लोग ताकि समझ हासिल करें दीन की। और फिर उसके बाद वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और डराएं अपनी कौम को जब लौट कर आए उनकी तरफ। क्यों डराएं, या ये सारा काम होना क्यों है? लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो भी नाफरमानियों से बचे। अगर टेक्स्ट के साथ आयत को देखें तो जब लोग तबूक से वापस आए तो कुछ लोगों के दिल में ख्याल आया कि तबूक के सफर पे ना जाने वालों की इतनी सख्त पकड़ हो गई है, लिहाजा अब इसके बाद अगर कोई मौका और जिहाद का आया तो हम सारे के सारे निकल जाएंगे। तो उस पे ये आयत नाजिल हुई कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जिहाद पे चले जाएं, बल्कि सबको जिहाद पे जाने की जरूरत नहीं है। तबूक के मौके तो कभी कभार आते हैं, लेकिन एक ऐसा जिहाद है जिसकी हर वक्त जरूरत है, और वो कौन सा? इल्मी जिहाद है। यहाँ से इस आयत ही का थीम ले के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी आपके साथ जो क्लासेस करते हैं वो उसका पैटर्न बिल्कुल इस आयत का है। मनहज ये है, अल्लाह ताला कहते हैं कि हर बंदा दीन की तरफ नहीं आ सकता। अब मैं थोड़ा सा एक अपने लफ्जों में आपके सामने इन आयात को करती हूँ क्लियर, फिर एक दफ़ा आपके साथ इंशाल्लाह अल्फाज के साथ भी चलूंगी। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो बनाया, ये दो तरह के इंसान हैं। एक वो होते हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलेक्चुअल, खूब जहनी वसत होती है, इंग्लिश भी बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं और थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इल्म जो होता है ना दुनिया का, ये हमें बहुत हसास बना देता है। इसीलिए आप देखिए आज के बच्चे कितने हसास हैं, और बड़ों को कुछ भी कह दें, माँ को डांट पड़ दे कुछ नहीं कहती, चौहर बीवी को डांट दे कोई बात नहीं, लेकिन वही बाप बन के जब बेटी को डांटता है बेटी माइंड करती है। तो दुनियावी उलूम जो होता है ना इंसान को बहुत स्मूथ कर देता है, जैसे इंसान बहुत डेलिकेट हो जाता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो देहातों में रहते हैं, आराबी, बद्दू, जानवरों में रहे, घास काटते रहे, चारा डालते रहे, रोटियां पकाते रहे। अब ये दो मुख्तलिफ लेवल है। अल्लाह का दीन जो इस दुनिया में हम सबको दिख रहा है ना, ये सबके लिए है, ये पढ़े लिखों के लिए भी है, ये अनपढ़ों के लिए भी है, ये एक बात जहन में आ जाती है। अब होता क्या है कि अल्लाह ताला अपने दीन को दो तरह से नाफिज करवाता है दुनिया में, एक है जिहाद के जरिए यानी किताल के जरिए, जंग लगती है, कुछ मुसलमान सिपाही जो होते हैं वो सरहदों पे जाते हैं, दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, और उसके बाद मुसलमान उस इलाके को जीत जाते हैं, वन कर लेते हैं, यानी मुसलमान उस जगह को हासिल कर लेते हैं। इसी तरह एक और दूसरा तरीका है इस्लाम के गालिब करने का, वो इल्म के जरिए होता है, इल्मी सरहदों का दिफा। मसलन आप देखिए कि एक तो मुल्क की सरहद होती है ना, मसलन यहाँ से आपके मुल्क की सरहद ख़त्म होती है तो दूसरे की शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जहनी सरहदें भी होती हैं। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि लोगों के जहन भी मुसलमान रहे, जिस तरह ज़मीन के टुकड़ों को हम मुसलमान करना चाहते हैं। और ये जहन कब फतह होते हैं इस्लाम वालों से? जब इल्माम होता है। यहाँ काफिर अपने झंडे गाड़ लेते हैं उन कौमों के अंदर जो कौमें इल्म से गाफिल होती हैं। आज इसकी बेहतरीन मिसाल अगर दी जा सकती है तो आज के उन यंगस्टर्स के जहन जो बहुत ज़्यादा अरसा गैर मुस्लिमों के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं दुनिया में, बहुत प्रोपेगंडे सुनते हैं इस्लाम के खिलाफ, तो आज उनके जहनों में भी कुछ ना कुछ डाउट्स आ गए। कोई कहता है क्या वाकई जिहाद सही है, क्या आप समझते हैं इस्लाम सच्चा मजहब है? एक यंग लड़की ने खुद मुझे आके पूछा एक मौके पर, कहने लगी कि आपको श्योर है कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, क्रिश्चियनिटी नहीं हो सकती, आर यू श्योर, क्या दलील है? इसी तरह एक मौके पर किसी ने कहा कि क्या दलील है कि ये कुरान जो आप हमें पढ़ा रही हैं ये ठीक है? अब आप इन सवालों को सुन के एकदम गुस्से में आ जाएं, आपका खून खौलने लगे, मकसद हल नहीं होगा ना। इस तरह के सवाल नमाज पे भी आते हैं, माएँ आके खुद बताती हैं कि ये देखो ये कितना कुफर की तरफ बढ़ गया कि कहता है कि इस नमाज की जरूरत ही नहीं है। तो अब जब ये दो किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं तो अल्लाह ताला ने ये आयत अमली तौर पे दीन कैसे फैलाना है उसकी मिसाल दे दी। लोग अल्लाह के नबी सल्लम के पास आना चाहते थे, जैसे कि पीछे बात हुई कौन उमर सादिकीन, अब गज़वे तबूक हो गया, اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ مسلمانوں کی اور دھاک بیٹھی۔ پہلے تو بدر اور فتح مکہ کے مرحلوں سے گزر کر اسلام واقعی پھیل چکا تھا، لیکن جب مسلمان تبوک سے واپس آ رہے تھے نا، تو ارد گرد کے بدو ایسے ہی کہہ لیں آج کے دور کے دیہاتی ولیجرز، ہاں وہ بھی مسلمان ہو ہو کے آنے لگے۔ اب جب کوئی یقین کریں کہ بعض لوگ صرف فتح اور گلیمر کو دیکھ کے آتے ہیں، آپ کی ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ ہے تو کم لوگ آئیں گے، آپ شادی رکھ لیں کسی چھوٹے سے گھر میں تو کم لوگ آئیں گے، اور شادی کے کارڈ پہ چھپا پرل کانٹیننٹل تو بہت لوگ آئیں گے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، دین میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسی لیے مسجدوں اور اپنے اداروں کو بم پمپ اینڈ شو سے سجاتے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے بھی آئیں گے کہ جگہ بڑی کمفرٹیبل ہے۔ اب جب مسلمانوں کو فتح ملی، تو فتح کا جہاں فائدہ بہت ہوتا ہے، وہاں ایک نقصان بھی ہوتا ہے، سب دین کی طرف آنے لگتے ہیں۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا جہاد کیا بن گیا اللہ کے نبی کے سامنے، کہ یہ جو ڈھیروں کے ڈھیر لوگ اسلام پہ آتے جا رہے ہیں، ان کی تربیت تو کریں۔ تبوک تو جیت کے آ گئے، تبوک کے موقع پہ فتح تو ہو گئی، لیکن یہ جو اسلام کا نام لینے والے آپ کے اپنے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں یا آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں، پہلے ان کی تو رہنمائی کی جائے، چنانچہ کیا کیا جائے۔ اب ہر بندے کا دل کیا چاہتا تھا کہ وہ تو اللہ کے نبی کے پاس جا کے بیٹھے، مین جگہ جا کے پڑھے، لیکن یہ پاسیبل نہیں تھا۔ لاکھوں لوگ کہاں اس دور کی مسجد نبوی میں آئے، تو یہاں نہ صرف یہ کہ اس دور کے تقاضوں کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک بڑا خوبصورت پیکج دے دیا۔ اور وہ کیا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے مومن اکٹھے نکل کے آ جائیں، کس کے لیے؟ علم کے لیے۔ شوق پیدا ہو چکا ہے کہ اب علم حاصل کرنا ہے، سارے مین جگہ آ کے مین برانچ میں آ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ساری صورت میں جہاد کی بات ہوئی نا، اور آخر میں اب علم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دونوں جوڑ لیں گے تو وہ بات بنے گی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ جس طرح میدان جہاد میں اسلام کا غلبہ چاہیے، اسی طرح میدان علم میں بھی مسلمانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب دین پھیلانا ہوتا ہے تو قتال کے ساتھ ساتھ زبان اور قلم کے ذریعے علم پھیلایا جاتا ہے، تو اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی بھی جگہ جا کے کتاب پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن سکھانا چاہتے ہیں، اس کو اس اینگل میں پہلے سمجھ لیں۔ اب ہوگا کیا، مثال پریکٹیکل صورت سے دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو زیادہ اچھا سمجھ سکیں۔ لیٹس سی، اگر ہم یہاں یہ قرآن کا کورس کر رہے ہیں، خواہش تو ہماری ہے اور آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ اس شہر کی ہر عورت اور ہر بچی اس وقت جہاں موجود ہو، لیکن کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے؟ کیا سارے آ جائیں گے؟ ہماری خواہشات کے باوجود نہیں آئیں گے۔ ساری عورتیں گھر چھوڑ کے نہیں آئیں گی، ساری لڑکیاں جاب چھوڑ کے نہیں آئیں گی۔ آپ کہتے ہیں ویکینڈ پہ شروع کیا ہے تاکہ ساری جاب والی بچیاں ادھر آ جائیں اور ورکنگ لیڈیز آ جائیں، پڑھنے والے لوگ آ جائیں، پھر بھی نہیں آئیں گے۔ اسلام کے پھیلنے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ کیا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ آ جائے، سٹرومن سے گروہ آ جائے، ایک لندے برگ سے گروہ آ جائے، ایک جو ہے وہ درمن سائڈ سے گروہ آ جائے۔ یہ مثال ہے، یہاں ہر علاقے ہر خاندان کی ایک لڑکی آ جائے، ایک عورت آ جائے، کوئی اس گاؤں کی آ جائے، کوئی اس گاؤں کی آ جائے۔ اب اس کو صرف اوسلو تک نہ لیں، یہ تو چھوٹا سا ہے، آپ پورے سنیریو میں دیکھیں، ہر طبقہ فکر کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آئیں، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، ریپریزنٹ کریں اپنے علاقے کو۔ پھر کیا کریں، یہاں کے لیے یتفقہوا فی الدین، اب دین کی فقہ حاصل کریں۔ اب یہ دین کے فقہ اور علم کے، اس کو میں الگ چھیڑوں گی، ابھی نہیں بات کرتی ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ بس ابھی آپ صرف جو سیکھ رہے ہیں اسی پہ بات کریں، یہ آئیں سیکھیں، صرف علم نہ لیں، تفقہ بھی لیں، سمجھ بوجھ بھی لیں، سیکھیں، پھر کیا کریں، پورا کورس ہو گیا، پھر اس کے بعد سکلز حاصل کریں، ٹریننگ سیشنز کریں، ایڈوانس کورس چھوٹے بڑے جو ہوں گے، کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو اس قابل کیا جائے کہ اب جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کیا کریں، والی یون زیرو قوما ہوں، آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ واپس جائے، کدھر جائے، اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس، اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف لوٹیں اور وہاں کام شروع کر دیں۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں کریں؟ اس لیے کہ لعلہم یحذرون، وہاں والے بھی تو ڈریں، یہ آپ کے ڈرنے کی بات نہیں، یہ یحذرون ان کی بات ہے، جو بھی یہاں نہیں آئے اب وہ آپ کے ذریعے سیکھیں گے۔ یہ ہے ایک خوبصورت سا پیکج جو اسلام نے علم پھیلانے کا دیا، اور افسوس کی بات، دکھ کی بات، आज इल्म के लिए काम करने वाले ही इस पैकेज प्लान को नहीं समझ पाते। मैं ऐसी जगहों को जानती हूँ कि जहाँ बड़े बड़े मदरसे कायम हैं, एक स्टूडेंट सारा साल वहाँ पढ़ती है, कई साल बल्कि एक नहीं कई कई साल पढ़ती हैं, और उसके बाद वही स्टूडेंट जब अपना कोई मदरसा खोल के दूसरी जगह बनाती हैं तो उस्ताद और शागिर्द की लड़ाई शुरू हो जाती है। कहती है इसने मेरे मदरसे के मुकाबले में अपना एक मदरसा खोल लिया, बल्कि जामिया जामिया फुला, और इसको उस्ताद की नाकामी समझते हैं कि शागिर्द ने भी अपना एक मदरसा कायम कर लिया। उस्ताद के जो कारिंदे वो कहते हैं स्टूडेंट्स हमारे इलाके में आए, वो कहते हैं हमारे यहाँ है, ये कोई दीन नहीं है इस्लाम। वो उस्ताद सबसे नाकाम उस्ताद है जिसने अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे टीचर्स की सूरत में क्रिएट ही नहीं किए। उस्ताद तो सारी जिंदगी नहीं रहेंगे, और बेजान चीजें मशीनें कैसेट सीडीज लिंक्स ये भी तब काम करते हैं जब इनको चलवाने वाले भी ट्रेंड लोग हों। ठीक है हर बंदा एक डेढ़ साल में पढ़ के तफसीर नहीं कर सकता, वो कुरान नहीं पढ़ा सकता, वो नहीं, लेकिन वो मददगार तो बन सकता है ना इस्लाम के लिए। आप देखिए कि आप पूरा अपने जिस्म को सोचें, पहले भी मैंने आपको ये मिसाल दी थी सूरत आले इमरान की आयतों में, शायद आपको याद हो वहां, लेकिन थोड़ी सी उसकी बात है कि आपका जिस्म है, इस पूरे जिस्म को खून की जरूरत है ना। आपका मेन खून कहां से निकल रहा है? आपके दिल से, आर्टरीज के, दिल पंप कर रहा है ना खून को। अब दिल के साथ जो आर्टरी लगी हुई आपको, तो वो इतनी मोटी होती है। अब अगर वही आर्टरी आपके पूरे जिस्म को खून देगी तो आपकी तो उंगली में भी पूरी नहीं आएगी, आपके पाओं की उंगली में वो आर्टरी पूरी नहीं आ रही। उसके लिए फितरत ने कितना प्यारा निजाम दिया है कि बड़ी आर्टरी फिर छोटी 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 ब्रांचेस में और एक नेटवर्क फैला हुआ है कि आपकी इस उंगली के अंदर भी हजारों खून की नालियां जो हमें नहीं दिखती। ये है दीन फैलाने का काम। एक मेन सोर्स हो, एक मेन मरकज हो, जिसको आप मेन इदारा कह सकते हैं, जहां से इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। खून सारा दिल से ही जा रहा है। खराबियां कहाँ होती हैं और आज हो रही हैं मुसलमानों में, कि जब लोग मेन मरकज से नसीहत लेना एडवाइस लेना छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमें इससे भी अच्छा काम करना आता है, हम कर लेंगे, हम खूब करते हैं, और वो उसी पे झगड़े, उसी पे नामों के झगड़े, उसी में इदारों के झगड़े, और बाकी लोग मसला समझ ही नहीं पाते कि ये सब जो है ये नामों के लिए हो रहा है या कुरान के लिए हो रहा है। हाँ नाम के लिए हो रहा होगा तो फिर तो वाकई लड़ना चाहिए, लेकिन जिनका मकसद ये है कि लअल्लहुम यहज़रून, लोग बच जाएं, जहन्नुम का ईंधन बनने से बच जाएं, आग में जाने से बच जाएं, अपनी मौत आप मरने से बच जाएं, इनकी नस्लें बेदीन होने से बच जाएं, ये कुफर से बच जाएं, वो तो कोशिश क्या करेगा कि दीन फैले। याद रखिए ये बात, नोट कर लें, दीन फैले, और जिनका मकसद ये कि हम फैलें, तो वो खुद को मोटा करेंगे, कहेंगे नहीं हम मोटे और मोटे हो, हमारा नाम और बड़ा और बड़ा। एक ही नाम से एक शहर में आप 10 इदारे खोल सकते हैं इंशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं। ये साउथ ब्रांच है, ये वेस्ट ब्रांच है, ये नॉर्थ ब्रांच है, जहां जरूरत है वो किया जा सकता है, लेकिन किसी एक नाम से 10 ब्रांचें खुल जाना भी गोल नहीं बनना चाहिए। अल्लाह ताला ने यहाँ बड़े प्यारे तरीके से हमें इतना आसान सा तरीका सिखा दिया कि लोगों सारे एक जगह नहीं आएंगे, तुम्हारे सबके मर्द लफ्जी तर्जमा नहीं सीखेंगे, तुम्हारी सारी औरतें नहीं सीखेंगी। अभी मैंने एक एंगल छेड़ा है, अभी मैंने तफक्को और इल्म का मामला नहीं छेड़ा, वो बात अलग, इसको देखते हैं, लेकिन इतनी बात क्लियर है ना। अभी शायद को अगर आप इसके साथ दोबारा भी देख लें कि वमा कानल मोमिनूना, सारे मोमिनों के लिए ये मुमकिन नहीं, क्या नहीं मुमकिन, लियन फिरू काफतन, के सारे के सारे निकल पड़े। इवन मैदान जंग में भी सारे नहीं जा सकते, फिर पीछे बच्चों का क्या होगा, औरतों का क्या होगा, हैंडीकैप का क्या होगा, और वो तो जिहाद तबूक का था जब फर्ज ऐन था, एक एक बंदे का निकलना लाजमी था। हर जंग में अल्लाह के नबी सबको नहीं लेकर गए, गज़वा बदर में तो कहा था जिसका दिल चाहे वो जाए, जिसका दिल चाहे वो ना जाए। तो लिहाजा अब जब जाना पड़ेगा आइंदा किसी जंग में तो सारे फिर भी नहीं निकलेंगे। हाँ अब इल्म की तड़प आ गई है, तुम्हें पता चल गया कि जिस तरीके से मुल्क की सरहदों को बचाना लाजमी है, इस तरह इंसानों की जहनी सरहदों की भी हिफाजत जरूरी है। अगर हमने ये काम ना किया तो आप बताएं कि अगले चंद सालों के बाद नस्लें किन की कॉन्कर्ड होगी, कौन फतह कर जाएगा हमारी नस्लों को, आप इमेजिन कीजिए। हम दुनिया के ऐसे खित्तों में बैठे हैं जहां डायरेक्ट रूट नहीं पहुंच रही, डायरेक्ट मदरसे दीन इल्म खाना काबा इमाम काबा नहीं है। अगर हम जो लोग यहाँ रहने वाले हैं हमने इस बात पे कोशिश ना की कि लअल्लहुम यहज़रून, क्या होगा? जिस दरख्त को पानी देना छोड़ दें कुछ अरसे के बाद सूख जाता है, वो खेतियां वीरान हो जाती हैं जिनको पानी नहीं मिलता। आप खुश हो रहे हैं इतने बिलियन मुसलमान, इतने ट्रिलियन मुसलमान, क्या करना है आपने कि जिनको इस्लाम ही नहीं पता। जिनको नमाज नहीं पता, जिनको रोजा नहीं पता। फिर आप देखिए कि बुनियाद में पानी दिया जाता है, किसी भी पौधे की जो जड़ होती है ना उसमें पानी देते हैं, पत्तों पर छिड़काव करते रहे, क्या पौधा बचेगा? नहीं बचेगा। बुनियादों पे काम करो। इल्म की रूह क्या है? तफक्को। तफक्को और इल्म का फर्क अब थोड़ा सा आपके सामने रखती हूँ। देखिए कि एक चीज है इल्म हासिल करना, ये डिग्री का नाम है आप कह लें, आपने मास्टर किया, आपने बीए किया, आपने पीएचडी की। इल्म दीन के नाते से कह लें, किताबें पढ़ने का नाम। मिसाल देती हूँ कि आपके इस कोर्स का जो एक नसाब है, लफ्जी तर्जमा आपने सीखा, दूसरा सब्जेक्ट आपकी तजवीद अच्छी हो गई, तीसरा आपका फिक्र सुनना है, उसमें आपने तहारत के, हज के और बेसिक्स जो हैं पिलर्स उसके मसाइल पढ़ लिए। ये है इल्म। इसके टेस्ट, इसके लफ्जी तर्जुमे, ये सारी चीजें, एक एक लफ्ज याद करके इसको लेना, ये बन गया आपका इल्म। आपको इसकी बुनियाद पर डिग्री मिल गई। लेकिन याद रखें, ये बड़ी अहम बात है आज के दौर के मुसलमानों की, खास तौर पर इल्म से, दीन से मुंसलिक लोगों की। मसला क्या है कि इल्म की तो बात हो गई, लेकिन तफक्को नहीं पैदा हो पाता। तफक्को पे जब बात आती है तो ये दो हिस्सों में बट जाती है। पहली किस्म आपकी, जो मैंने मिसाल दी कि आपको किताबें पढ़ा दी, आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन आपकी सूझ नहीं ठीक हुई, समझ बूझ नहीं ठीक हुई। यानी किताब में तो आप मसला समझ गए, अमली जिंदगी में वहीं के वहीं खड़े। अमली बुत सारे जिंदगी में, शिर्क नहीं निकला, बिदत अभी निकली नहीं, यानी अप्लाई करना नहीं आया उस दीन को। गज़वे तबूक पढ़ ली, अपनी जिंदगी के तबूक पे मामले नहीं लेने आए। शादी कैसे करें ये लेनी नहीं आई, गुलाम दूसरी चीजें कैसे करें ये लेनी नहीं आई। अब हुआ क्या, इसके नतीजे में आपने इल्म तो हासिल कर लिया, तफक्को ना ली। रूहानियत का नाम है तफक्को, आप कह लें तकवा का नाम है। और जब तक इल्म के बाद तफक्को का दर्जा नहीं आता, इल्म हासिल नहीं होता, ब्लेंड नहीं होता वो इल्म। आज क्यों इल्म वालों को अपना इल्म बताना पड़ता है कि हमारे पास इतनी डिग्री है? क्योंकि वो जिस्म का हिस्सा नहीं बना हुआ दिखता। लोग देखते हैं इनकी भी शादियां वैसी हैं जैसे अनपढ़ों की हैं, इनकी भी गम और मरने जीने वैसे हैं जैसे अनपढ़ों के हैं, इनके घर, इनकी जिंदगी, इनका खाना पीना, इनकी मईशत माशरत बिल्कुल वैसी है जैसी आम लोगों की। वो कहते हैं हम ऐसे इल्म से दूर। तो आप कह सकते हैं कि जिसने सारे सब्जेक्ट क्लियर किए लेकिन दिल ना बदला, सोच ना बदली, शऊर ना आया, जिंदगी क्यों है, इल्म क्यों हासिल कर रही हूँ, हर रोज सुबह उठ के आ जाती हूँ किताबें पढ़ने, ये क्यों है, तो समझ लें कि इल्म के दर्जे पे रुका, तफक्को पे ना हुआ। अफसोस की बात है कि आज के दौर में, मैं हर एक की बात नहीं करती और मैं बहुत सारों को जानती भी नहीं, लेकिन जिन चंद को मैंने देखा है, आठ आठ साल वो आलिमा का कोर्स करते हैं, नसाब पढ़ते हैं, डिग्री है। लेकिन यकीन करें कि सिर्फ बेसिक तहारत और सफाई की अहमियत भी उनको नहीं समझ आई होती, वल्लाही। वो उनके हाल हुलिये गंदे, उनके इदारे गंदे, उनकी जगह गंदी, उनके टॉयलेट पेपर सामने पड़े होते हैं जब आप उनके इदारों में जाते हैं, जो बर्तनों का ढेर है वो टप में पड़े हुए सामने दिखते हैं आपको। ये कुरान की सेरेमनी हो रही है कि आज कुरान पूरा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने ऐसे प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं, मैंने तकमील असनाद के प्रोग्राम लोगों के अटेंड किए, मैंने खुद भी गुजरी इन मरहलों से। यकीन करें, लोग फर फर गर्दान आपको सुनाएंगे, दराबा दराबा दराबू दराबा दराबा, जितना मर्जी आप पूछें उनसे, उनको इख्फा आएगा, उनको रूठ आएंगे। अमली जिंदगी में उस बच्ची को एक खानदान में जाके उनकी खुशी का सबब कैसे बनना है वो नहीं आता। तो आप कह सकते हैं कि इल्म में पक्का, तफक्को में कम हुआ। असल इल्म का जो हासिल है ना वो तफक्को है। हमने तफक्को को आज बना दिया फिक्र। अब इस पर भी बात कर लेते हैं। इमाम अबू हनीफा की फिक्र ये है, इमाम शाफी की फिक्र ये है, इमाम मालिक की फिक्र है और इमाम शाफी की। हमने तफक्को को फिक्र बना के तफक्को की जड़ें खराब कर दी। यकीन करें, आज उम्मत मुस्लिमा चार टुकड़ों में बट गई सिर्फ फिक्र के नाम पे। और बाज लोगों ने तो उसको शिर्क और बिदत करने वालों से भी ऊपर ले लिया। उनको मुशरिक अच्छे लगते हैं, बिदती भी अच्छे लगते हैं, उनको नॉन मुस्लिम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको अपनी फिक्र से हटके दूसरी फिक्र पे काम करते हुए लोग बर्दाश्त नहीं उनसे होते। और सिर्फ फिक्र के फर्क वो इतना अहम समझते हैं कि नेकियों के बड़े बड़े बंडल उनके नाम में पड़ सकते हैं, सिर्फ इसलिए वो इजाजत नहीं देते कि कहीं हमारी फिक्र की लाठियां ना उतर जाएं इधर से। वल्लाही, ये एक दूसरी हद है। फिक्र समझ बूझ का नाम है, गौर करो। अब आप देखिए कि हमने बात की कि दो तरह के लोग होते हैं, एक हाईली एजुकेटेड लोग, इन लीड्स पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग, किसी भी सोसाइटी में ये बहुत थोड़े होते हैं। जैसे मक्खन लस्सी पे थोड़ा सा आता है ना, और लस्सी ज्यादा होती है, दूध पे बलाई थोड़ी आती है, बिल्कुल ये इन लीड्स थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन ये इतने छाए होते हैं कि मला बन के लोगों के दिलों पे छाए होते हैं। इसके बरक्स अमूमन ग्रास रूट, जिसको सीधे सादे देहाती पढ़े लिखे नहीं आम जिंदगी, ये लोग ज्यादा होते हैं। ये ट्रू है ना? अब आप इमेजिन करें जरा इस बात को कि थोड़े से लोग तो बहुत आपकी बारीकियां दीन की सीखेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं वो आपकी मिसालें भी समझेंगे, लेकिन वो देहाती हैं, आप चली जाती हैं किसी कच्ची बस्ती में इल्म देने, और आप जाके उनको कहती हैं चलो पहले कापी पेंसिल निकालो, वो उनका सोनी कोई नहीं। फिर आप उन्हें कहते हैं पढ़ो इसम फेल हरफ शद्दा यहाँ करो, ये अख्फा है ये गुन्ना है, वो कहेंगे बाजी ये कोई नए बीजों के नाम है, हैं ये कहाँ से आ गए, ये कोई कोई नई फसल का नाम है। आप उसको कहते हैं निकालो आइन का मखरज, वो कहेगा बाजी पेट में भूख है। नहीं सीखेगा वो गरीब, वो अल्लाह का बंदा नहीं सीख सकता आपके लफ्जी तर्जमे तक। ऐसे फिर कम पढ़े लिखे लोगों में जब आप जाएंगी ना, तो आप सिर्फ तफक्को के दर्जे पे काम करेंगी, फिर आप उनको लफ्जी तर्जमे में नहीं उलझाएंगी, फिर आप उनको इस तरह नहीं करेंगी, और इस तफक्को के लिए लंबा टाइम रहना पड़ता है। हम तो आपको 18 मंथ में ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं ना, या कभी 2 साल में करेंगे या कभी से कम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सेट प्लान होता है, थोड़े वक्त में आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है कि जिसको आप दोनों साथ लेके चलेंगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे लोगों में करें, मिसाल है कि आप जो यहां बैठे हैं आपको पढ़ना ही ना आए, और आज ऐसा हो सकता है कई दफा कुरान की जगहों में जहां पढ़ाते हैं आप गोल तो करते बनाते हैं उन्हीं लोगों को कि जो आपके लिए यानी आगे आपको लगता है कि ये सीखेंगे, लेकिन कई वहां ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता। तो कम पढ़े लिखे लोगों में काम करने की स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको लंबा टाइम गुजारना पड़ेगा। आप 1.5 साल में कोर्स नहीं कराएंगी, आपको वहां गुजारना वक्त हो सकता है। जिन औरतों को आप पढ़ा रही है ना, वो कुछ नहीं सीखेंगी, लेकिन उनकी नमाज ठीक होती जाएगी, उनकी तहारत के मसले ठीक होते जाएंगे, उनके बाकी काम ठीक होंगे, उनकी गोदों में बैठे हुए बच्चे पढ़ेंगे आपसे। लॉन्ग लॉन्ग टाइम है, उसके लिए फिर सबर करना पड़ता है। उनको सिर्फ दीन की समझ बूझते हैं, तहारत है उनको बारीकियों में ना दें। पढ़े लिखे लोगों में आप 4-6 लफ्जों में बात करें, वो कहते हैं ओके ओके डन डन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो यूज होते हैं पॉइंट्स में बात करने पे। जितना आप कम पढ़े लिखे लोगों में करते हैं, और मैं इसको बिल्कुल टैली करके आपको बता सकती हूँ, इंशाल्लाह जब ये कोर्स पूरा होगा आपको ये सारी स्किल सिखाएंगे अगर आप इसके लिए तैयार होंगे। मिसाल देती हूँ कि जैसे अब आप मेरी इस वक्त 2 क्लासेज हैं, ये क्लास मेरी आप खवातीन के साथ है, आप डिफरेंट तबका फिक्र से हैं, इसमें औरतें भी हैं और कुछ दूसरी हैं। अब वीकेंड्स पे मेरी एक क्लास होती है, वीकेंड्स जो स्टूडेंट्स हैं या उसमें वो लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, आप में से किसी ने दोनों क्लासें अटेंड की होंगी, जमीन आसमान का फर्क है स्ट्रेटेजी में। मैं पढ़ाती हूँ, मैं जो तैयारी करती हूँ, आपकी जो क्लास हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 घंटे का एक लेसन है, वहां वो 1.25 घंटे में पूरा हो रहा है। उनको सिर्फ टू दी पॉइंट चीजें चाहिए, टिक 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 टिक, वो इतनी बातों में उलझ जाएंगे। आपको ये बातें क्यों अच्छी लगेंगी? कि आपका दिल नरम होगा, आपको तफक्को ज्यादा चाहिए। एक सिंपल कह रही हूं, मैं कोई पॉइंट आउट नहीं कर रही, मिसाल दे रही हूं ताकि कल जब आप बात करें तो आपको समझ आए। आप कल अपने मियां को सिखाना चाहते हैं दीन, आप कहते हैं पहले लिखें लफ्जी तर्जमा, बा ये इसम ये अल्लाह, वो कहेंगे भागो मेरा कस्टमर आ रहा है मैं जा रहा हूं। आप रोएंगे मियां तो कुफर पे आगे इनकार कर गए, देखो इनको तो शौक नहीं। नहीं, मत सिखाएं आप उनको लफ्जी तर्जमे, उनको तफक्को दें, नमाज क्या होती है, कैसे है, बेसिक्स ये हैं, तहारत के ये मसाइल हैं, खुशी गमी ये मसाइल हैं। तो लिहाजा इसको हासिल करने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत की जरूरत है। वक्त पूरा हो गया क्लास का, लेकिन टॉपिक पूरा नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعلهم يحذرون.